पिंकेश कुमार की आवाज़ में पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर तुलनात्मक राजनीति पेपर थर्ड चैप्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल और संदर्भ देशों से उसका तुलनात्मक अध्ययन। अमेरिका में राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास। वर्तमान समय में प्रायः सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है, किंतु राजनीतिक दलों के संबंध में अमेरिकी संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण यह नहीं था। उन्हें भय था कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेष और बैर की भावना उत्पन्न करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप नवजात अमेरिकी राष्ट्र तथा उसके प्रजातंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संविधान सभा में मैडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र भर्त्सना की और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिकी जनता को राजनीति दलों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा था कि दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करे और उनसे बचे। दलगत विद्वेष से लोकप्रिय संस्थाएं छीन होती है और प्रशासन में दुर्बलता आती है। यह दलीय भावना समाज को आधार रहित विद्वेषों और झूठे आशंकाओं से उद्वेलित करती है, जिसके एक भाग को दूसरे भाग के प्रति शत्रुता के लिए प्रेरित करती है एवं समय समय पर विद्रोह और दंगों का कारण बनती है। लेकिन वाशिंगटन की यह चेतावनी अमेरिकी राजनीति के स्वाभाविक विकास को नहीं रोक सकी। वास्तव में अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही राजनीतिक दल बीज रूप में विद्यमान थे। एक गुट जिनका नेता अलेक्जेंडर हैमिल्टन था शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में था। दूसरा गुट जिसका नेता जेफरसन था राज्यों की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। इन दोनों गुटों को क्रमशः फेडरलिस्ट तथा एंटी फेडरलिस्ट के नाम प्राप्त हुए। जेफरसन और हैमिल्टन दोनों ही सशक्त अमेरिकी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन दोनों के मार्ग अलग अलग थे। इस गुटबंदी के बावजूद जॉर्ज वाशिंगटन को सभी पक्ष का सम्मान प्राप्त था और वे सर्वसम्मति से अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वाशिंगटन शासन को दलीय भावना से ऊपर रखना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा अलेक्जेंडर हैमिल्टन और टॉमस जेफरसन दोनों को ही मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। परंतु उनके मतभेद समाप्त नहीं हो सके और 1776 में जेफरसन ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर अपनी सारी शक्ति एंटी फेडरलिस्ट, जिन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन भी कहा जाता है, को संगठित करने में लगा दी। 1776 के राष्ट्रपति चुनाव के समय दलबंदी अस्पष्टता उभर उठी और यह स्पष्ट हो गया कि न केवल नेता वरन नागरिक भी दलों में विभक्त थे। 1796 के राष्ट्रपति चुनाव में फेडरलिस्ट विजयी हुए, किंतु 1800 के निर्वाचन में फेडरलिस्टों को कड़ा आघात पहुंचा और सत्ता डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दलों के हाथ में आ गई। अनेक कारणोंवश इसी समय से फेडरलिस्ट दल का प्रभाव कम होता गया और 1815 के पश्चात यह दल राजनीतिक रंगमंच से लुप्त हो गया। डेमोक्रेट्स और व्हिग। फेडरलिस्ट दल के बाद राजनीतिक रंग पर एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया, परंतु इस दल के नेताओं में भी आपसी मतभेद और सत्ता के लिए संघर्ष था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले डेनियल वेबस्टर के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ, जिसे अनुदार दल या व्हिग पार्टी का राष्ट्रीय गणतंत्रवादी दल का नाम दिया गया। इस समय डेमोक्रेटिक दल का नेता जैक्सन था और नेशनल रिपब्लिकन दल का नेता जॉन क्विंसी एडम्स। 1828 में डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उस समय से लेकर 1841 तक यह दल सत्तारूढ़ रहा। 1850 के बाद व्हिग दल की प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आई और 1856 तक इसका पूर्ण विघटन हो गया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा की समाप्ति के प्रश्न को लेकर दो विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नामक दलों के द्वारा हुआ। यही दल अपने मूल नामों के साथ तभी से चले आ रहे हैं। इन दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल बहुत छोटे छोटे हैं और उनकी शक्ति नगण्य है। इन दोनों दलों की नीति और कार्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। अमेरिका में दोनों दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली है और लोकमत कभी एक दल के पक्ष में तो दूसरे दल के पक्ष में होता है। यदि पिछले 30-40 वर्षों का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो 1932 से लेकर 1952 तक राष्ट्रपति पद डेमोक्रेटिक दल का प्रभुत्व रहा। 1952 से 1960 तक रिपब्लिकन दल के नेता आइजन हॉवर राष्ट्रपति रहे। 1960 से 1968 तक डेमोक्रेटिक नेता कैनेडी और उसके बाद लिंडन वी जॉनसन राष्ट्रपति रहे। 1968 और उसके बाद 72 में रिपब्लिकन नेता रिचर्ड निक्सन, 1976 में डेमोक्रेटिक नेता जिमी कार्टर तथा 1980 से 84 एवं 84 से 88 तक रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड रीगन एवं 1988 से रिपब्लिकन नेता जॉर्ज बुश राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 1992 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 1996 के चुनाव में क्लिंटन 4 वर्ष के लिए दोबारा राष्ट्रपति पद पर चुन लिए गए। इससे पूर्व डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद पर 1933 से 1945 में दोबारा चुने गए थे, लेकिन अब तक कांग्रेस के दोनों सदनों की दलीय स्थिति इस प्रकार रही है। 1968 में प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन के 187 और डेमोक्रेट के 248 तथा सीनेट में रिपब्लिकन 42 व डेमोक्रेट 58। 1972 रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा में 191, सीनेट में 43, डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सभा में 243 और सीनेट में 57 सदस्य थे। 1994 रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा 230, सीनेट 52, डेमोक्रेट प्रतिनिधि सभा 204, सीनेट 48। 1996 प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन दल 227, सीनेट 54, डेमोक्रेट प्रतिनिधि सभा 204, सीनेट 46। 1996 के चुनाव परिणाम। नवंबर 1996 में राष्ट्रपति पद के साथ साथ सीनेट की 34 एवं प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों के लिए भी चुनाव हुए। सीनेट में डेमोक्रेट्स को 14 व रिपब्लिकन्स को 20 सीटें मिली। अब सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 54 तथा डेमोक्रेट पार्टी के 46 सदस्य हो गए। प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी को अधिक यानी 227 सीटें और डेमोक्रेट को 204 सीटें मिली। इस प्रकार अब सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिल गया है। राष्ट्रपति पद पर बिल क्लिंटन ने 49.2 मत हासिल किए। उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के रॉबर्ट डॉल ने 40.48% मत प्राप्त किया। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव और 2002 के राष्ट्रपति के चुनाव और उनका विश्लेषण। 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में 4 उम्मीदवार थे। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डेमोक्रेट पार्टी के अल गोर, ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार कानूनी दृष्टि से निर्दलीय रॉल्फ नेडर और रिफॉर्म पार्टी के उम्मीदवार पैट बुकनैन। फ्लोरिडा के अलावा 49 राज्यों और कोलंबिया जिले में निर्वाचक मंडल के जो चुनाव हुए उसमें डेमोक्रेट पार्टी यानी अल गोर ने निर्वाचक मंडल के 262 मत, रिपब्लिकन पार्टी बुश ने 246 मत, ग्रीन पार्टी रॉल्फ नेडर ने 5 मत प्राप्त किए। लेकिन फ्लोरिडा राज्य के लोकप्रिय मतों की गणना के प्रसंग में भारी विवाद ने जन्म ले लिया तथा विभिन्न स्तरों पर 36 दिन के कानूनी और न्यायिक विवाद के बाद ही और अंतिम रूप से में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह तय हुआ कि फ्लोरिडा राज्य के 25 मत रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में हैं। इस प्रकार जब निर्वाचक मंडल ने राष्ट्रपति चुनने के लिए अपने मतों का प्रयोग किया तब स्थिति इस प्रकार रही। जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन पार्टी 271 मत, अल गोर डेमोक्रेटिक पार्टी 266 मत। इस मतदान में रॉल्फ नेडर के 5 निर्वाचकों ने अल गोर के पक्ष में मतदान किया था। इन चुनावों की एक विशेषता यह बात रही कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अल गोर ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश की तुलना में अमेरिकी जनता से 300,000 मत अधिक प्राप्त किए थे, लेकिन निर्वाचक मंडल का बहुमत जॉर्ज बुश को प्राप्त हुआ तथा इसी आधार पर जॉर्ज बुश राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में यह चौथा अवसर है जबकि राष्ट्रपति पद के विजेता की तुलना में पराजित उम्मीदवार ने अधिक लोकप्रिय मत प्राप्त किए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डिक चैनी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2002 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट के जो चुनाव हुए उन चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के दोनों ही सदनों में रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया। अमेरिकी दलीय प्रणाली की निम्नांकित विशेषताएं हैं। पहला, दलों का संविधानेतर विकास। अमेरिका में राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास से यह नितांत स्पष्ट है कि ब्रिटेन की ही भांति अमेरिका की दलीय प्रणाली भी किसी वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं हुई है। वस्तुतः अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और वे इसके विरोधी थे। अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलों के विषय में सर्वथा मौन है, किंतु जनतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका में वाशिंगटन के शासनकाल के अंत में ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गए और तभी से बराबर अमेरिकी राजनीति का संचालन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल संविधानोत्तर विकास का परिणाम है। दूसरा, द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन की भांति अमेरिका में ही दो ही दल प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इन दो राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहते हैं, किंतु द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व सतत बना रहता है। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति 100% रूप से विद्यमान है। इसका प्रमाण है कि प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राज्यों के गवर्नर पद, इनमें से किसी में से इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। समय समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न हुए हैं, किंतु इनमें से कोई भी राष्ट्रीय निर्वाचनों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका और शीघ्र ही इनका लोप हो गया है। इस संबंध में सर स्नीडर का कथन है, जब हम कहते हैं कि अमेरिका में दो राजनीतिक दलों की प्रणाली है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यहाँ केवल दो दल हैं, वरन यह है कि यद्यपि राष्ट्रपति पद के लिए एक दर्जन दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, पर वास्तव में यहाँ केवल दो बड़े दल हैं और छोटे दल इतने छोटे हैं कि उन्हें तो प्रायः लोग भूल जाते हैं। भूतकाल में इस प्रकार के अनेक छोटे राजनीतिक दलों का उदय और विघटन हो चुका है। वर्तमान समय में ही इस प्रकार के कुछ छोटे दल हैं। कृषक वर्ग का असंतोष व्यक्त करने के लिए ग्रीन बैक दल और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लेबर रिफॉर्म दल की स्थापना हुई। इसी प्रकार डेमोक्रेटिक पार्टी के वाम पक्ष के रूप में पॉपुलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के वाम पक्ष के रूप में प्रोग्रेसिव पार्टी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अमेरिका में सोशलिस्ट दल और साम्यवाद दल भी है, लेकिन इसमें से किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव या महत्व नहीं है। द्विदलीय पद्धति के उदय के कारण। द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारणों में सर्वप्रथम पूर्व परंपरा और अनुभव है। अमेरिकी वासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परंपराओं से आरंभ किया था और ब्रिटेन द्विदलीय पद्धति का आदि स्थान रहा है। इसी प्रकार पूर्व परंपरा अनुभव ने अमेरिका में द्विदलीय पद्धति को पनपने में महत्वपूर्ण योग दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नरों की निर्वाचन पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को विकसित करने में ही योग दिया है। राष्ट्रपति पद अथवा राज्यों में गवर्नर पद पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उत्सुक दल को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, और ऐसी स्थिति में दो से अधिक राजनीतिक दलों का प्रभावशील होना कठिन हो जाता है। मैकमोहन के शब्दों में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली तीसरे दल को हतोत्साहित कर देती है, जिसके फलस्वरूप द्विदलीय पद्धति सुदृढ़ हो गई है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। द्विदलीय पद्धति के विकास का एक अन्य कारण है, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सदैव ही द्विदलीय पद्धति को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अमेरिका में सभी निर्वाचनों के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति को ही अपनाया गया है। अमेरिका में किसी तीसरे दल का प्रभाव न बढ़ने का कारण एक यह है कि छोटे राजनीतिक दल जिन प्रश्नों को अपनाते हैं, उन प्रश्नों को शीघ्र ही बड़े दल अपना लेते हैं। उनके कार्यक्रम को जब बड़े दल अपना लेते हैं, तो छोटे दल आधारहीन हो जाते हैं और अंततः उनका लोप हो जाता है। फर्ग्यूसन और मैकहेनरी ने इस स्थिति की विवेचना इस प्रकार की है, आज से 2-3 शताब्दियों पूर्व वामपंथी दल जिन सिद्धांतों का समर्थन करते थे, उनका अधिकांश अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों में शामिल कर लिया गया है। तीसरे दल की गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति शासन पदों का लाभ भले ही प्राप्त न कर सके, किंतु उनके द्वारा प्रतिपादित नीतियां जन स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर देश की भूमि के कानून बन जाती है। देश की राजनीति में दो ही राजनीतिक दलों को प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण दोनों दलों में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता चलती है और दल अधिकाधिक लोक कल्याण का कार्य करने की ओर प्रेरित होते हैं। तीसरा, विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव। अमेरिका में जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ, उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए और आज इन दलों में कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दल परस्पर सहमत हैं और इस क्षेत्र में दोनों दलों की एकमतता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, और आंतरिक क्षेत्र में दोनों दल पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने पर सहमत हैं। लॉस्की ने कहा है कि कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दलों के अलग अलग स्थायी विचार क्या हैं। हरमन फाइनर के ने अमेरिकी दलों के विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं, और बियर ने तो इस संबंध में यहाँ तक कहा है कि वहाँ के मतदाताओं की दशा उन निर्जीव प्राणियों जैसी होती है जो खाली शब्दों के लिए मतदान करते हैं। इस संबंध में वास्तविक स्थिति का विश्लेषण डोयल ने अधिक अच्छे प्रकार से किया है। उनके अनुसार आजकल दोनों राजनीतिक दल कई रूप में इतने समान हैं कि उनको कभी ट्विडली कह दिया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष से एक लड़ाई लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिससे दोनों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था कर ली जाती है ताकि पराजित होने वाले को गंभीर क्षति ना हो। वस्तुतः दोनों दलों के द्वारा चरमतावाद से दूर रहकर मध्यम मार्गी नीति को अपनाने का कार्य किया गया है, और यही उनके हित में है। चौथा, दलों का शिथिल संगठन। अमेरिकी राजनीतिक दल सदस्यता तथा दलीय अनुशासन की दृष्टि से शिथिल संगठन है। अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंधकर कार्य करते हैं। अनेक बार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधि अपने दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मतदान करते हैं। इस प्रकार अमेरिकी राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले ढाले संगठन है, जिसमें विचारधारा संबंधी एकमतता तथा कठोर दलीय अनुशासन का सर्वथा अभाव रहता है। लॉस्की के शब्दों में, केवल निर्वाचन के समय ही वे राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। पांचवा, दबाव गुटों का प्रभाव। अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल तो दो ही हैं, लेकिन छोटे छोटे दबाव गुटों का प्रभाव काफी पाया जाता है। ये दो गुट दो प्रमुख दलों पर दबाव डालकर अपने हितों को सिद्ध करते रहते हैं। छठा, लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। अमेरिका में दलिया पद्धति से संबंधित एक परंपरा लूट की प्रणाली या लाभ प्राप्त करने की प्रणाली है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति दल चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पदच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे। छोटे पैमानों पर तो लाभ प्राप्त प्रदान करने की प्रणाली प्रारंभ से ही प्रचलित थी, लेकिन 1828 में एंड्रयू जैक्सन ने बड़े पैमाने पर अपनाई अपनी यह अमेरिकी राष्ट्रीय सरकार का एक आधार बनाई। राष्ट्रपति जैक्सन ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर अपने समर्थक क्षेत्र के व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। दलीय आधार पर लाभ प्रदान करने की यह प्रणाली बढ़ती गई और राष्ट्रपति ग्रांट के समय तक इसने सभी सीमाएं पार कर ली। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा जाता है कि इसने प्रजातंत्र को सरलता प्रदान की है और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया है, परंतु वास्तव में ऐसा कहना सही नहीं है। व्यवहार में लूट की प्रणाली ने नागरिक सेवाओं को भ्रष्ट करने का कार्य किया है और इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता को तीव्र आघात पहुंचा है। लूट की प्रणाली पर प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी और अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 1881 में जब एक निराश और बेरोजगार व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी गई तो इसे संपूर्ण देश की आत्मा को तीव्र आघात पहुंचा और 1883 में कांग्रेस के द्वारा पेंडल्टन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि लगभग 90% स्थानों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा योग्यता के आधार पर चयन कर लिया जाता है और शेष लगभग 10% स्थान राष्ट्रपति के अनुग्रह के आधार पर भरे जाते हैं। इस प्रकार लूट की प्रणाली को सीमित कर दिया गया है, लेकिन अब भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान है। वर्तमान समय में न्यायिक सेवाओं, पोस्ट ऑफिस, विशेष एजेंसियों और स्वतंत्र आयोगों में राष्ट्रपति के अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की जाती है। दलों का संगठन। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा जा सकता है, अस्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अन्य समितियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन विशेष महत्व अस्थायी समितियों का ही है। अस्थायी दलीय संगठन। दोनों प्रमुख दलों का अस्थायी संगठन लगभग समान है और यह 5 स्तरीय है। पहला, मतदान जिला समितियां। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की इकाई मतदान जिले हैं। मतदान जिलों का आकार जनसंख्या के घनत्व और मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिससे चुनाव अधिकारी सरलता से उनका प्रबंध कर सके। मतदान जिले की औसतन संख्या 100 से 500 के बीच होती है। अमेरिका में लगभग 1,25,000 मतदान जिला समितियां और इकाइयां हैं। मतदान जिले के दलीय अध्यक्ष का कर्तव्य क्षेत्र में मतदाताओं से संबंध स्थापित करना और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न है। यह अपने क्षेत्र में दल के समर्थकों, अपने मित्रों आदि के लिए सरकारी नौकरियां तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, नगर समितियां, कस्बा तथा ग्राम समितियां। नगरों में मतदान जिला समितियों के ऊपर एक वार्ड समिति होती है। वार्ड में से नगर पार्षद चुने जाते हैं, जिनका नगर पालिका और नगर की राजनीति से संबंध रहता है। नगर समिति वार्ड समितियों तथा मतदान जिला समितियों के कार्यों की निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए ग्राम समितियां स्थापित की जाती है। तीसरा, काउंटी समितियां। अमेरिका में 3,000 से भी अधिक काउंटियां हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से प्रत्येक काउंटी में एक समिति होती है। चौथा, राज्य केंद्रीय समितियां। अमेरिका संघ के 50 राज्यों में से प्रत्येक में दोनों राजनीतिक दलों की एक केंद्रीय समितियां हैं। यह अपने समस्त राज्य क्षेत्र में दलीय संगठन की देखभाल करती है। इसके द्वारा राज्य के पदों और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के चुनाव आंदोलन को संगठित किया जाता है। राज्य की केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत। समिति के सदस्यों की संख्या राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः दल का एक प्रभावशाली सदस्य राज्य की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष होता है। पांचवा, राष्ट्रीय समिति। प्रत्येक दल के शीर्ष पर एक राष्ट्रीय समिति होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि आते हैं, जिनमें एक पुरुष तथा एक स्त्री होती है, जिसका निर्वाचन राज्य की केंद्रीय समिति करती है या राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों या राज्य सम्मेलन द्वारा होता है। राजनीतिक दल के संगठन में इस राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन या अध्यक्ष होता है, जिसे वह व्यक्ति मनोनीत करता है जो कि दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया हो। राष्ट्रीय समिति दल के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की केवल औपचारिक रूप से पुष्टि करती है। राष्ट्रीय समिति अपने अन्य पदाधिकारियों को चुनती है और दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का संचालन करती है। अमेरिका के दोनों दल की राजनीतिक दलों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन है। राजनीतिक दलों का कार्यकरण। अमेरिकी संविधान के निर्माता राजनीतिक दलों की शंका की दृष्टि से देखते थे और उन्हें भय था कि इससे रमराज अमेरिकी राष्ट्र तथा अमेरिकी प्रजातंत्र को आघात पहुंचेगा। किंतु एक तथ्य यह भी है कि दल प्रणाली के बिना प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। और जैसा कि मुनरो ने कहा है, संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत किया था, वह आज अमेरिकी प्रजातंत्र की आधारभूत शिला बन गई है। संयुक्त राष्ट्र की शासन पद्धति पर दलों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए ब्राइस ने लिखा है, दल संविधान द्वारा स्थापित वैधानिक सरकार के साथ साथ दूसरी ही सरकार बन गई है, जिसका कानून में कहीं उल्लेख नहीं है। इसे वह डायनेमो इंजन कहा जा सकता है, जिसमें वैधानिक सरकार अपनी शक्ति प्राप्त करती है। वैधानिक और दल की सरकारें अपने ढांचों में बहुत भिन्न हैं, परंतु वैधानिक सरकार को अपनी चालक शक्ति का इस दल या सरकार से ही प्राप्त होती है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य। अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के एक दूसरे से पृथक तथा स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहे तो शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा राष्ट्रपति विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी दलीय आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार दलीय संबंध कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो अपने दल का नेता होता है, कांग्रेस में अपने दल के सदस्यों के सामने दलीय बैठक में विधायी प्रस्ताव रखता है और साधारणतया अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरा, राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका 20 करोड़ जनसंख्या वाला एक विशाल देश है, जिसमें विभिन्न जातियों तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में आज जो प्रबल राष्ट्रीय एकता देखी जाती है, उसे विकसित करने में राजनीतिक दलों ने प्रभावशाली भूमिका अदा की है। यद्यपि वर्तमान समय में स्थिति ऐसी नहीं है, किंतु सामान्यतः एक ही दल को शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक उद्देश्य की पूर्ति में निर्देशित करता है। ऑग और रे का कहना है कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवसाय के लोगों में एकता स्थापित करने में राजनीतिक दल सीमेंट का सा कार्य करते हैं। अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में यह कथन नितांत सत्य है। तीसरा, विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को संभव बनाना। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार के अंतर्गत वह राजनीतिक दलों के आधार पर ही कार्य कर रही है। राजनीतिक दलों के प्रभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन होता है और बार बार प्रतिनिधि सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में न्यूयॉर्क और ओहियो जैसे कुछ राज्यों में सीनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं और राजनीतिक दलों के बिना उनमें चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। चौथा, जनता को राजनीतिक शिक्षा। प्रजातंत्रीय व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर निर्भर करती है और अन्य देशों के समान ही अमेरिका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के सर्वप्रमुख साधन के रूप में कार्य करते हैं। पांचवा, राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं। प्रोफेसर लास्की ने अमेरिकी राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की है। उनके द्वारा की गई आलोचना के दो प्रमुख आधार हैं। प्रथम, अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में ये दल सत्ता प्राप्ति मार्ग के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रहते हैं। दूसरा, अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। आलोचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि इन राजनीतिक दलों ने ही अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की लूट प्रणाली को जन्म दिया है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनाव में बहुत अधिक धनराशि व्यय किया जाता है और इससे अनेक प्रकार की राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अमेरिकी राजनीतिक दलों के प्रति की गई इन आलोचनाओं में पर्याप्त सत्यता है, लेकिन इसके साथ भी यह तथ्य है कि अमेरिकी शासन प्रणाली राजनीतिक दलों पर ही आधारित है। राजनीतिक दलों के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों में अपने आप की रक्षा कर सका है। राजनीतिक दलों ने अमेरिकी लोकतंत्र को सजीवता और गतिशीलता प्रदान कर उसके सफल संचालन में योग दिया है। अमेरिका और इंग्लैंड की दल प्रणाली की तुलना। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के राजनीतिक दलों में दो प्रमुख समानताएं हैं। प्रथम, इन दोनों ही देशों में राजनीतिक दल संविधानोत्तर विकास के परिणाम है। न तो ब्रिटिश संविधान और न ही अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख किया गया है, किंतु वर्तमान समय में स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों का अध्ययन किए बिना इन दोनों ही देशों की शासन व्यवस्था को भलीभांति नहीं समझा जा सकता। दोनों ही देशों में राजनीतिक दलों को कानूनी स्थिति प्राप्त न होते हुए भी वे शासन व्यवस्था की आधारशिलाएं हैं। दोनों देशों के राजनीतिक दलों में एक अन्य प्रमुख समानता द्विदलीय पद्धति है। दोनों देशों में दो ही राजनीतिक दलों को देश की राजनीति में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त है और देश की राजनीति में अन्य राजनीतिक दलों का कोई महत्व नहीं है। असमानताएं, लेकिन इन दोनों देशों के राजनीतिक दलों में समानता की अपेक्षा असमानता निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉबेल ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल उद्देश्य व रूप की दृष्टि से इंग्लैंड तथा अन्य अधिकांश देशों से अलग हैं। इन दोनों देशों की दल प्रणाली के निम्न प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। पहला, वर्तमान समय में ब्रिटिश राजनीति में दो प्रमुख दल हैं, अनुदार और श्रमिक दल। इन दोनों राजनीतिक दलों में सिद्धांत और विचारधारा का स्पष्ट अंतर है। अनुदार दल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विद्यमान स्थिति को कम से कम परिवर्तन के साथ बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन श्रमिक दल का उद्देश्य है शांतिपूर्ण और संवैधानिक पद्धति से प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना। किंतु अमेरिकी राजनीति के दो प्रमुख दलों रिपब्लिक और डेमोक्रेट में विचारधारा संबंधी भेद नहीं है। विदेश नीति या राजनीतिक और आर्थिक जीवन के आदर्शों के संबंध में इन दोनों राजनीतिक दलों का एक समान दृष्टिकोण है। फाइनर के अनुसार, ब्रिटेन के अनुसार अनुदार तथा श्रमिक दलों की स्पष्ट भिन्नता के समान विभिन्न आदर्शों की साधना के आधार पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो दलों के बीच अंतर की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। वास्तव में इन्हीं एक ही दल के दो अंग कहना अधिक उचित होगा, जिनको रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो विभिन्न नामों से पुकारा है। लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिकी राजनीति के दो दलों की तुलना दो ऐसे खाली बोतलों से की है जिनमें अलग अलग पेय के लेबल लगे हुए हैं। एमर्सन की यह पंक्ति भी ब्रिटिश दलों से अमेरिकी दलों का भेद ही बताती है। साधारणतया हमारे दल यानी अमेरिकी दल परिस्थितियों के दल हैं, सिद्धांतों के नहीं। दूसरा, संगठन और दृष्टिकोण की दृष्टि से ब्रिटिश राजनीतिक दल राष्ट्रीय होते हैं, उनमें अधिक सुदृढ़ संगठन देखा जा सकता है, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक दलों में स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल है। अमेरिकी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही राष्ट्रीय रूप धारण करते हैं, अन्यथा वस्तुतः वे स्थानीय और राज्य संगठन ही होते हैं। तीसरा, ब्रिटिश राजनीतिक दल अपने कठोर अनुशासन के लिए सुविख्यात है और ब्रिटिश राजनीति में दल के सदस्यों द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की घटनाएं बहुत कम ही घटित होती है, लेकिन यह कठोर दलीय अनुशासन अमेरिकी राजनीतिक दलों के लिए ऐसी ईर्ष्या की वस्तु है जिनके द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अनेक बार अपने दल के नेता के आदर्शों निर्देशों की अवहेलना की जाती रही है। चौथा, संभवतया ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का यह परिणाम है कि ब्रिटिश दल सदैव सक्रिय रहते हैं, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक दल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव समाप्त हो जाने के बाद 3 वर्ष से भी अधिक समय तक वे निष्क्रिय बने रहते हैं। पांचवा, अमेरिकी राजनीतिक दलों में दबाव गुट बहुत अधिक सक्रिय है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। छठा, अमेरिका में राजनीतिक दलों में से ही संबंधित एक लक्षण लूट की प्रणाली है, जिसके द्वारा विजेता दल बहुत बड़ी संख्या में नागरिक सेवाओं से संबंधित पद अपने ही राजनीतिक दल के समर्थकों को प्रदान करता है, किंतु ब्रिटिश राजनीतिक दलों और उनके व्यवहार में ऐसी किसी पद्धति को नहीं अपनाया गया है।